ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की दिशा में परिवर्तन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के सलाहकार प्रोफेसर रमेश चंद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में आज से शुरू हो चुका है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीति आयोग के मेंबर और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद। प्रोफेसर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
धन्यवाद।
प्रोफेसर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी का क्या महत्व है, थोड़ा हम इसके ऊपर जानकारी दें और इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ये एक बड़ा इसको प्रेस्टीजियस माना जाता है। ये 3 साल में एक बार किसी देश को इसकी मेजबानी करने का अवसर मिलता है और वो उसके लिए काफी कंपटीशन होता है, बहुत से देश इसको अपने यहाँ करना चाहते हैं। हमारे देश में ये पहली बार 1959 में मैसूर कर्नाटका में हुआ था, जो अधिवेशन का के बहुत पुराना रिश्ता है। रादर इसका ओरिजिन जो है, जो एल्महर्स्ट जिन्होंने इसे शुरू किया था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से प्रभावित होकर वो इंडिया में शांति निकेतन में विजिट करके गए, फिर दोनों ने कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्री में कुछ सिचुएशन देखी, उसके बाद उन्होंने इस चीज का एक डिसीजन लिया था कि इस तरह का एक विश्व रूप पे अधिवेशन होना चाहिए। तो इसका महत्व ये है कि इसमें बहुत उत्साह के साथ बहुत देशों के जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर फार्मर उनसे संबंधित विषयों पर अपना शोध करते हैं, जिनका अपना एक्सपीरियंस है, नए आइडियाज विकसित करते हैं, तो वो इस अधिवेशन में अपने जो भी उन्होंने पेपर लिखे हों वो पेपर प्रेजेंट करते हैं, लोगों के साथ अपने आइडियाज शेयर करते हैं, एग्रीकल्चर में क्या क्या नए इश्यू आ रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं या आ सकती हैं, तो उनको वर्तमान में हम किस तरह से उनको एड्रेस करें और आगे के लिए सारी परिस्थिति को देखकर कैसे एग्रीकल्चर को एक डायरेक्शन दी जानी चाहिए, तो इन सब पे एक चर्चा होता है जहां से फिर बड़े बड़े आइडियाज निकलते हैं नीतियों के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जो कोई अलग अलग देशों ने अपने कोई गोल रखे होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक टारगेट रखा है या हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का गोल रखा है, तो इन जो उद्देश्य हैं इनकी पूर्ति के लिए एग्रीकल्चर को कैसे ज्यादा सक्षम बनाया जाए, उसमें कैसे उसका योगदान किया जाए, इस तरह के सब विषयों पे पूरे एक हफ्ते भर वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं वो उस पर डिस्कशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं।
अगर वैश्विक स्तर पर बात करें और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है तो वर्तमान स्थिति में भारत की भूमिका को ये कैसे दर्शाता है?
भारत एक आकर्षण का विषय पहले भी रहा है और अब तो काफी ज्यादा भारत की ओर लोगों का आकर्षण है, लेकिन पहले भी जो आर्थिक मुद्दे वगैरह हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह कहते थे कि इंडिया एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिसर्च के लिए हमारी लैब है, तो यहाँ के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो इतने वेरीड होते हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां, हमारे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और तरह तरह की यहाँ फसलें, तरह तरह के यहाँ एनिमल हस्बेंड्री, तो भारत पे जो एक फोकस रहता है वो भारत के अर्थशास्त्री जो हैं उन्हीं का नहीं, जो बाहर के अर्थशास्त्री हैं उनका भी उस पे एक फोकस रहता है और वो इससे सीखते भी हैं और इसको दूसरी जगहों पे जो है रेप्लिकेट भी करते हैं। जैसे जो एक मेन लेक्चर था एल्महर्स्ट लेक्चर, तो उसमें उन्होंने जो वो पेपर प्रेजेंट किया, दुनिया के साथ साथ उन्होंने हमारे देश में पानी किस तरह से, ग्राउंड वाटर की परिस्थिति कैसे गंभीर होती जा रही है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। तो इस तरह से इंडिया एक इतना इम्पोर्टेंट कंट्री है, वो एक फोकस में रहता ही है उनकी रिसर्च के, चाहे वो इंडिविजुअल रिसर्चर हों चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो हों, उनका एक फोकस रहता है। तो ये मैं कहूंगा कि दो तरीके से इंडिया के लिए जो रेलेवेंट चीजें हैं वो ये है कि एक तो सीधे जो आप इंडिया पे रिसर्च कर रहे हैं, और दूसरा यदि कहीं और कोई बेस्ट प्रैक्टिस हैं जिनसे कुछ सीखने को मिलता है तो वो एक दूसरा है उसका आदान प्रदान, कि उससे भी हम एक सीख लेते हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा कई चीजों का उल्लेख किया गया, उसमें से था भारतीय कृषि के प्राचीन ज्ञान और परंपराओं के बारे में भी उन्होंने कहा है। तो ये प्राचीन ग्रंथ और विधियां जो हैं आज के इतनी एडवांसमेंट के बाद किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है?
सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का पूरे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट वो सभी ने अपना ग्रेटिट्यूड उनकी ओर एक्सप्रेस किया कि उनके आने से जो कॉन्फ्रेंस की एक प्रेस्टीज है उसको एक बढ़ावा मिला है और उसको एक विजिबिलिटी मिली है। और उन्होंने जो पुराना 1969 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भाग लिया था, तो उसी तरह से उन्होंने भी जो एक ट्रेडिशन है उसको और पक्का किया, और इस तरह की जो डिस्कशन होती है उसको उन्होंने आके एक किस्म से बहुत सभी लोगों का उत्साह बढ़ाया। लेकिन उसके साथ साथ जो प्राचीन भारतीय जो सोच है उसके बारे में उन्होंने काफी गहन बातें बताई। किसी भी चीज को आगे ले जाने का तौर तरीका वो समय की जरूरतों के हिसाब से बनाना पड़ता है। कोई आजादी के बाद या 1960 के दशक में फूड की शॉर्टेज इतनी हो गई थी कि हमें देखना पड़ा कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी हो जाए, हमें जो भूख की और फूड शॉर्टेज की समस्या थी उसे एड्रेस करना था। तो तब हमने ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एग्री केमिकल्स, नई नई वैरायटीज, इन सब का जो है सहारा लिया। लेकिन ओवर टाइम एक्सपीरियंस ये बताता है कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनकी मेरिट है सस्टेनेबिलिटी में, लेकिन जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं उनकी विशेषता है उनकी प्रोडक्टिविटी में, कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा आती है लेकिन वो ज्यादा इनपुट भी यूज करती हैं। तो जब हमारे पास ग्रोथ एक बहुत बड़ा मुद्दा था तब हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया, और अब हमारे पास सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा मुद्दा होता जा रहा है कि हमारे जो नेचुरल सिस्टम है जिस पर कृषि आधारित है यदि वो हेल्दी नहीं रहा तो उसके बहुत नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं
जी।
तो अब चर्चा ये हो रही है कि इन दोनों में हमें एक संतुलन रखना है, ग्रोथ में भी हमें ग्रोथ भी चाहिए, फूड में वृद्धि भी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए कि वो सस्टेनेबल रहे, एनवायरमेंट खराब ना हो। मैं जो समझता हूँ कि यदि इन दोनों में बैलेंस लाना है तो हमें दोनों ही जो अच्छी बातें मॉडर्न फार्मिंग की हैं उनको लेकर, और जो हमारी प्राचीन खेती थी तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लैरिटी के साथ इस तरह की चीजों का जिक्र किया, जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया, और जो खाना और सेहत का आपस में एक बहुत बड़ा संबंध है उसका भी उन्होंने हमारे जो शास्त्रों में जो जिक्र है उसकी ओर भी उन्होंने ध्यान दिलाया। क्योंकि अब ये दुनिया में एक रियलाइजेशन आ रहा है कि भारत जैसी जो प्राचीन एक सभ्यता है, यहाँ के जो उपनिषद हैं, यहाँ के जो पुरानी बुक्स हैं, तो उनमें बहुत सी ऐसी विजडम है जिसको हम अपनी तत्कालीन जो समस्याएं अब एग्रीकल्चर में या किसी भी क्षेत्र में जो हम देख रहे हैं उनका समाधान करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए वहां से हम एक गाइडेंस ले सकते हैं
जी। और भारत आज एक फूड सरप्लस देश माना जा रहा है और विभिन्न खाद्य उत्पादों में प्रमुख उत्पादक के रूप में भी उभरा है। तो बीते इन सालों में क्या क्या परिवर्तन आए और भारत की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं और क्या क्या प्रमुख पहलू रहे हैं इसके पीछे?
ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ देर बाद हमारी जो फूड प्रोडक्शन की ग्रोथ थी वो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ से ज्यादा होने लगी, और प्रति व्यक्ति जो हमारी फूड प्रोडक्शन है वो उसमें निरंतर एक वृद्धि आई। लेकिन पिछले 10 साल में यदि हम उस वृद्धि को देखें तो उसमें एक फर्दर बहुत बड़ा एक्सेलरेशन हुआ है। जैसा कि पहले हम 10वीं 5 वर्षीय योजना में एक टारगेट रखते थे 4% ग्रोथ इन एग्रीकल्चर और सोचते थे ये बहुत बड़ा हमने टारगेट रखा है, लेकिन अब यदि आप देखो तो हम पिछले 7 साल में वर्ष 16-17 से लेकर वर्ष 2022-23 के बीच 7 साल में हमारा कृषि जीडीपी का ग्रोथ रेट 5% रहा है और अब हम दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से कृषि अर्थव्यवस्था की रफ्तार हमारी रही है सारी दुनिया में, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा ये शो करता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने एक बहुत बड़ी भूखमरी उससे हम निकल के पहले बाहर आए, हमने धीरे धीरे अपने जो आयात हैं उनको कम किया और अब हमारा जो एक्सपोर्ट है और यदि उसकी रेशो देखी जाए कि एक्सपोर्ट की रेशो हमारे एग्रीकल्चर के जीडीपी के साथ क्या है, वो करीब 6% के लगभग है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट से जो हम अर्न करते हैं वो जितना हमारे एग्रीकल्चर से कुल आय जनरेट होती है उसका 6% है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन के नेट इम्पोर्टर से हम नेट एक्सपोर्टर जो है अमर्ज हुए हैं
जी।
और कुछ कमोडिटी में तो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं हम, जैसे राइस के केस में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं हम, जहां कभी थाईलैंड वियतनाम होते थे उनको हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है, उनका एक्सपोर्ट हमारे से आधा भी नहीं है। तो ये इस तरह की बहुत हमारी उपलब्धियां जो है कृषि के क्षेत्र में हुई।
संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा कि सस्टेनेबल फार्मिंग, क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स पर भारत के प्रयासों की बात की गई और अगर हम एक छोटे किसान की भी बात करें जो कि जैविक खेती को कैसे अपनाए और अपनी आय को भी बढ़ावा दे सके, तो इसके उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि कैसे वो अपनी आय को बढ़ा सकता है जैविक खेती को अपना करके?
किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि जो अब बहुत चर्चा हो रहा है उनको केवल 2-4 फसलों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, एक डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन जैसे हम कहते हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप्स की ओर हो, फ्रूट एंड वेजिटेबल की ओर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, इसी तरह लाइफ स्टॉक है, चाहे वो डेयरी है, चाहे पोल्ट्री है, चाहे फिश है, जहां जिस चीज की संभावना है वो एक सेकंड लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है कि उस पे वो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अब हमारे यहाँ जो एक हम अल्टरनेटिव पद्धति की बात कर रहे हैं, कई जगह जैविक खेती की बात होती है, कई जगह प्राकृतिक खेती की बात होती है, उनके अपने अपने खूबियां हैं। जैविक खेती करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले एक सेटबैक आता है, फिर उसके बाद कवर करते हो। प्राकृतिक खेती में इस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन लेबर वगैरह आपको काफी ज्यादा ध्यान से इन सब चीजों को करना पड़ता है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ये चीजें एक जर्क के रूप में, सडनली एक परिवर्तन के रूप में नहीं करनी चाहिए, हमें धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। और अब देश इस परिस्थिति में है कि यदि हमें इस डायरेक्शन में हम जाएं तो थोड़ी बहुत सेटबैक भी प्रोडक्शन में हो तो हम उसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं, अब हम इस कैपेसिटी में हैं। तो मैंने एक नीति आयोग से अपने एक पत्र में इसका एक रोड मैप दिया था कि 2030 तक हम ये टारगेट लेकर चलें कि हम लगभग देश का 20% क्षेत्र जो है उसको केमिकल फ्री एग्रीकल्चर की ओर ले जाएं।
जी बिल्कुल।
और इन दी मीन टाइम हमें ये जो हमारी चाहे प्राकृतिक खेती है चाहे जैविक खेती है इसमें साइंस लाकर इसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि हमारे लिए ये बेहतर होगा, ये मेरा कैलकुलेशन के आधार पर मानना है कि हम एक टारगेट लेकर चलें कि अगले 8-10 साल में हम इस केमिकल फ्री फार्मिंग को लगभग 20% तक लेकर जाएं।
आज की इस चर्चा में हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की दिशा में परिवर्तन पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के सलाहकार प्रोफेसर रमेश चंद, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।